नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीन प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके, बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।